हमेशा इस बात का, शावक के जीवन में तो हिंसा कदम कदम पर है, कदम कदम पर, लेकिन उसके बावजूद भी वो अहिंसक कहला सकता है। सिर्फ कितना कर ले, संकल्पी हिंसा नहीं करूंगा, इरादा करके इंटेंशनली किसी को पीड़ा पहुंचाने का भाव भी नहीं करूंगा, ऐसी क्रिया भी नहीं करूंगा इंटेंशनली कि ये सब चीटियां हमारे यहाँ पर हो जाती, सांप तो अलग, ऐसा नहीं, सबको मारूं नहीं, मैं तो पूरी बचाने की कोशिश करूं, इसके बाद भी मर जाएंगी मैं जानता हूं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है उनको बचाने की, बस इतना ही कर सकते हैं घर गृहस्थी में। मारने के लिए बिना प्रयोजन के और इंटेंशन के साथ इतना भरम त्याग कर दें तब भी है, और सावधानी पूर्वक काम करें तो अच्छा रहे। महाराज जयपुर में चाहे चौमासा चाहे कहीं भी करें, लेकिन जहां पर भी कहें करें वो स्थान भीड़ भाड़ वाला ना हो। अरे वाह, शांति से अच्छे से हो जाए, अच्छी बात। जयपुर का सेंट्रल प्लेस हो तो काफी लोग आपकी अमृतवाणी से लाभान्वित हो जाएं, अगर हो सके तो चौराहा शहर में ना करें क्योंकि भीड़ भाड़ और पार्किंग की समस्या बहुत रहेगी। वाह, ये कह रहे हैं, मतलब उनको अपनी भीड़ भाड़ से मुश्किल है कि हमें निकलने नहीं मिलेगा और हमें अपनी पार्किंग नहीं करना पड़ेगी। यदि आपका चतुर्मास, अब देखना लास्ट में, यदि आपका चतुर्मास महावीर नगर में हो जाए तो बहुत अच्छा। बात ये है उनकी, वो तो सभी, मतलब यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ नहीं, यहाँ पर पार्किंग की सब पहले सब असुविधाएं रख दी और फिर उसके बाद ये सब सुविधाएं, जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता कि देखिए ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी, मैं जो भी हो, भावनाएं तो बहुत अच्छी हैं, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन सभी चीजें अच्छी हैं भैया, अपना मन अच्छा हो तो सब अच्छा होता है, कहीं भी रहो। आचार्य महाराज कहते हैं कि चाहे अकेले में रहो चाहे भीड़ में रहो, अपने में रहने की कोशिश करना, नहीं तो ना अकेले में रहना और ना भीड़ में रहना, दोनों ही काम नहीं आ पाएंगे, अपने में रहना जहाँ भी रहो। सबके लिए यही मैसेज है, ये सब चीज़ें बाहर की देखेंगे, ध्यान इन सबका भी रखेंगे, और भी चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें मुख्य रूप से तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, अपने स्वास्थ्य, क्योंकि उसके बिना धर्म ध्यान नहीं होता, शरीर का भी ख्याल रखना पड़ेगा, साधना जहाँ पर आसानी से हो, और स्वाध्याय हो, तीन बातें मुख्य हैं, उनकी मुख्यता है, बाकी फिर सबका कल्याण वो तो अपने आप हमारे अपने कल्याण में ही सबका कल्याण निहित है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और जिस आचार्य महाराज से सारी बातों का डिस्कशन करने के बाद ही कोई डिसीजन वो जो होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अभी तो मुझे आप जानना चाह रहे हैं कि कल क्या आदेश मिला है, अभी तो मैंने डिक्लेयर तक नहीं किया, अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अभी मुझे इस बात का पहले विचार कर लेना है कि जहाँ राग द्वेष कम हो, सबसे पहले यदि राग द्वेष कम होता है तो मेरे लिए अल्टरनेट भी है, वो मेरे अपने ऊपर निर्भर है कि अगर आपको ऐसा लगे कि राग द्वेष अधिक है तो फौरन सूचित करें और आप मूव करें दूसरी जगह। हाँ, इसलिए पहली प्रायोरिटी है कि मुझे अपना धर्म ध्यान करने में जहाँ पर आसानी होगी, मेरा स्वाध्याय आसानी से हो, मेरी साधना हो सके और साथ में स्वास्थ्य की रक्षा भी हो, सबका तो कल्याण हो ही, लेकिन मुख्य चीज क्या है। आचार्य महाराज हमेशा इन्हीं तीन बातों को ध्यान में रख करके और स्थान चूज करने के लिए कहते हैं, तो हम उस चीज का ध्यान रखेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, आपको बहुत आसान लगता है पर इतना आसान है नहीं, फिर भी आपकी भावनाएं आप बनाए रखिएगा, अभी मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैंने कोई डिक्लेयर नहीं किया। अभी अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं अभी। ये बताइएगा पारसनाथ की पंक्तियों के बारे में, ये तो बड़ा स्तोत्र देख करके मुझे बताना पड़ेगा। इन्होंने जो है जो जो चीज़ें इसमें लिखी हैं, मैं इसको रख ले रहा हूँ, लाइनें भी लिखी हैं, स्तोत्र की संख्या भी लिखी है, तो उनमें मैं देख करके बताऊंगा। अच्छा, अरे प्रमेय रत्नमाला का छंद इतना इस प्रकार वर्णित है, ये तो समझ में आने वाली चीज है। मैं सोच रहा था कि उसमें से प्रश्न किम गुरुताया मूलम उत्तर यथा इदम प्रार्थनम नाम, प्रश्न किम लाघनम उत्तर यांचा। अच्छा, पार्श्वनाथ स्त्रोत में चौथा दोहा इस प्रकार है, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, महासंकटों से निवारे विधाता निकारे विधाता, सबे संपदा सर्व को दे हीरा। जैन दर्शन में पर को एक दूसरे का कर्ता ही स्वीकार नहीं किया, और प्रभु से किसी प्रकार की याचना करने को तो मिथ्यात्म माना है। ये प्रश्न तो ये है इनका, एक्चुअली हमारे यहाँ पर भक्ति का कॉन्सेप्ट जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें आप थोड़ा सा ब्रॉड होकर के थोड़ा सोच लीजिएगा। दो लाइनें हैं, उन पर अपन विचार करें। मोरी तो से बनी ताते करत पुकार, ठीक है ना भगवान, मेरा काम तो आपसे होने वाला है, आप ही करोगे और आप ही को सब करना है। एक ये भी बोलते हैं, और एक लाइन ये भी बोलते हैं उसी के साथ में कि मुझ कारज के कारण सुहा। दोनों को हम समन्वय करके चलते हैं। एक तरफ जब हम स्तुति करते हैं तो भगवान को ही सब कुछ मान करके और अपने को समर्पित करके श्रद्धा की भाषा में बोलते हैं कि जो कुछ भी होगा आपकी कृपा के बिना नहीं होगा। जब हम भगवान की कृपा मानते हैं तो मानिएगा वहां भी हमारे भीतर यही ध्यान रहता है कि भगवान नहीं करेंगे, लेकिन मैंने किया, ये अहंकार ना आ जाए। इस अहंकार को तोड़ने के लिए जरूरी है कि आप ही ने किया, मैं क्या कर सकता था। वास्तव में बात ये थी, विनोबा की मां जब दही जमाती थी तो भगवान का नाम लेती, तो विनोबा जब थोड़े बड़े हो गए तो उनने कहा अम्मा दही काय से जमता है, जिस तरह जमाया जाता वैसे ही जमता है ना, हाँ वैसे ही जमता, तो फिर बीच में भगवान जी की क्या जरूरत, नाम गाय को लेती, क्या भगवान जी जमाते हैं क्या आकर के? अच्छा जमाते हैं अगर, तो दूध को ऐसे ही जमा देना चाहिए उनको दही, हम उसमें कोई प्रक्रिया नहीं करें और जम जाना चाहिए। तो माँ ने क्या जवाब दिया, बेटे मैं दही जमाती हूं ये अहंकार ना आ जावे, इस अहंकार से बचने के लिए मैं भगवान का नाम ले लेती हूँ कि मैं कौन होती हूँ, ये तो अपना द्रव्य का जैसा परिणमन है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, बाकी तो जैसी योग्यता है वैसा परिणमन होता मेरे भीतर यही भाव। तो हमारी भक्ति के भीतर भी यही भाव, तब तो हम क्लियर करते हैं, भगवान से भी क्लियर करते हैं कि भगवान धोखे में न रही हो कि तुम कर रहे हमाओं काम, मुझ कारज के कारण सुआप, कार्य तो मेरे भीतर होगा, कारण आप बनोगे, सिर्फ इतना ही है, लेकिन आपके बिना, आपके निमित्त के बिना, मेरे उपादान में योग्यता होते हुए भी मेरा कार्य नहीं होगा, इसलिए मैं निमित्त को कभी मुक्त करके कहता हूं कि आप ही ने किया, और अहंकार से बचने के लिए, और वास्तव में तो मैं जानता हूं कि मेरे उपादान के अनुरूप ही कार्य होने वाला है। कितने लोग हैं भगवान के दर्शन करते हैं भैया, जिसके अंदर जैसी क्षमता है वैसा ही, कितने बच्चे हैं एक साथ स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही गुरुजी पढ़ाते हैं, लेकिन कोई फर्स्ट डिवीजन आता है, कोई थर्ड डिवीजन आता है, कोई गोल्ड मेडल भी ले लेता है, क्यों? जिसका जितना योग्यता होगी उस निमित्त के माध्यम से उतना ही करेगा। तो अपने यहाँ पर भक्ति इसी उद्देश्य से की जाती भैया। ऊपर के दो प्रश्न जो प्रमेय रत्नमाला के हैं वो मैं फिर आपको उसमें से देख करके ही बताऊंगा, वो प्रश्नोत्तर रत्नमाला, ये भैया जी पढ़ाते हैं ना शाम को, तो ये मेरे ख्याल से उन्हीं के से क्लियर करवाइएगा प्रश्न, भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ की उत्पत्ति किस स्थान पर और किस दिन हुई। इतिहास में तो हम बहुत कच्चे हैं, ये हमको नहीं मालूम। भगवान महावीर स्वामी को प्रीदत्त चक्रवर्ती के भाव में बैराग का कारण क्या था, ये भी नहीं मालूम। फेल, दो क्वेश्चन 0-0 मिलेगा दोनों में। संगी पंचेंद्री की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है, संगी पंचेंद्री की, संगी पंचेंद्री की उत्कृष्ट आयु रहेगी 33 सागर, देवों की अपेक्षा से 33 सागर संगी पंचेंद्री। अगर आपने संगी पंचेंद्री मनुष्य कह दिया होता तो 3 पल भोग भूमि वाले मनुष्य की 3 पल की उत्कृष्ट आयु होती, और अगर आपने संगी पंचेंद्री त्रेंच कह दिया होता तब भी 3 पल। हाँ, आपने सिर्फ संगी पंचेंद्री कॉमन लिखा है तो वो तो 33 सागर ही होगी। संस्कार शिविर में आप, संस्कार शिविर में क्या लिख रहे हैं आप, माँ लोगों को या बहनों को परमिशन क्यों नहीं दी जाती है संस्कार शिविर में, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। भैया कैसा चाह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं संस्कार शिविर, तो उसमें क्या करेंगे इस, ये कौन सा वाला शिविर है, संस्कार शिविर नहीं है, अच्छा वो तो, वो उसकी स्टाइल क्या है, किस तरह से करते हैं, मैनेज करना पड़ता उसमें, व्यवस्था बहुत करनी पड़ती है ना, सुबह से शाम तक आपको पूरे कंट्रोल में रखना पड़ेगा, आपको अपना घर छोड़ करके एक जगह रखने के लिए पूरी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, और इसलिए शायद वो व्यवस्था ना बन पाने की वजह से आप ये मत सोचिएगा कि माँ लोगों को बहुत इन्फीरियर माना जा रहा है इसलिए उनके लिए क्यों नहीं रखा। अच्छा अगर देखा जाए तो वो लोग तो वैसे भी फोकट में धर्म करते रहते बहुत, उनको और ज्यादा धर्म करने की आवश्यकता नहीं, अगर ऐसा उत्तर अपन ले ले तो भी इन्फीरियर नहीं मानिएगा, शायद व्यवस्था की दृष्टि से सुबह से शाम तक हमें व्यवस्थाएं देना पड़ेंगी, उसमें बहुत बहुत जिम्मेदारी हो जाती है, तो शायद इस वजह से ना शामिल करते हों, सिर्फ जो है भाई लोगों को और उनको संस्कारित करने का होता हो, शायद यही रहा होगा संस्कार शिविर के मायने, वो सुबह से शाम तक जो ठीक उसमें धर्म की शिक्षा भी देते हैं, पूजा अभिषेक सब सब कुछ, भोजन इत्यादि सब आपका सब व्यवस्था करेंगे वैसा। भगवान का अभिषेक हो रहा है, जब हम खड़े रहना चाहिए या कि अभिषेक देख करके बैठ जाना चाहिए, कृपया बताइएगा, अब बताओ, सब चीजें एक 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 चीज अपने विवेक से भी तो कुछ करो भैया। भगवान का अभिषेक देखते हैं तो खड़े हो जाते हैं, फिर अपन ने देख लिया अब बैठ जाएंगे, उसमें तो बहुत कॉमन सी बात है। अब जब तक चलता रहेगा तब तक हमको अपनी पूजा भी करनी है, तो शुरू हुआ हमने देखा और अपना कर कोई पूजा शुरू कर दी, शायद इसी वजह से पूछ रहे होंगे कि अब उतनी देर तक अभिषेक होता रहेगा तो हम खड़े रहेंगे क्या, नहीं उतनी देर अपन ने विनय कर ली, मुख्य बात तो जो है विनय की। वेदक सम्यक दृष्टि और शायक सम्यक दृष्टि में क्या अंतर है, लोग कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं, 2-3 बार ये प्रश्न आ गया है, शायद अलग अलग लोगों को कंफ्यूजन है। ये वेदक सम्यक दर्शन उसे कहते हैं, दूसरा नाम इसका क्षयोपशम सम्यक दर्शन भी है, जिसमें कि सम्यक प्रकृति का उदय और अन्य 6 प्रकृतियों का क्षय और उपशम दोनों की मिली जुली अवस्था होती है, वो क्षयोपशम सम्यक दर्शन या वेदक सम्यक दर्शन कहलाता भैया, जिसमें कि हम अनुभव करते हैं सम्यक प्रकृति के उदय में चलमल अगाध ये दोष लगते हैं, वो वेदक सम्यक दर्शन। छायिक सम्यक दर्शन में तो 7 प्रकृति अनंत अनुबंधी की 4 और मिथ्यात्व की 3, इन 7 का क्षय हो जाता, सत्ता से उनका अभाव ही हो जाता है, जबकि वेदक सम्यक दर्शन में सारी चीजें सत्ता में रहती हैं, उदयाभावी क्षय और सदवस्था और उपशम और सम्यक प्रकृति का उदय, इनकी सबकी मिली जुली अवस्था का नाम वेदक सम्यक दर्शन या क्षयोपशम सम्यक दर्शन है। सबकी समझ में तो आएगा नहीं, वो तो जिनने पूछा है उनके समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन नहीं है, सबके समझ में क्या, थोड़ा सा अध्याय किया होगा तो समझ में आएगा। सिद्धों के 8 गुण कौन से होते हैं, सम्मत, नान दंशन, वीरी, सूमम, तहेव, अवघनम, अगुरु लघु, मब्बावाहम, 8 गुणा होंती, सिद्धानम। रोज पढ़ते हैं, सिद्ध भक्ति करते हैं, तो ये उनके 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण उत्पन्न हो जाते हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अगुरु लघुत्व, अव्यावाधत्व और सूक्ष्मत्व और अवगाहनत्व, ये आठ गुण जो है वो सिद्ध भगवान के होते हैं। किस द्रव की जो पर जिस द्रव की जो परिणति है उसे उसी का कहना क्या व्यवहार नहीं है, या उसे अन्य द्रव की कहने वाला निश्चय नहीं, उल्टा कर दिया आपने मामला, किया तो है नए पद्धति को लेकिन उल्टा कर, जिस द्रव की जो परिणति है उसे ठीक वैसा ही कहना ये निश्चय नहीं, और संयोगी अवस्था की परिणति को अन्य द्रव के साथ मिलकर के जो परिणति हुई है उसको उसको ज्यों का त्यों कहना वो व्यवहार में। अभ्युदय और निश्चय सुख में अंतर क्या है? अभ्युदय सुख तो जो है स्वर्ग सुख है, और निश्चय मतलब मोक्ष का सुख। एक में है पांचवें इंद्रियों का सुख, दूसरे में है आत्म सुख, दोनों में इतना ही अंतर। संगी पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट आयु ये भी हो गया। अरे वाह, जीव के स्वभाव और प्रभाव क्या होते हैं? जैसे कि राग द्वेष करते हैं अपन, ये विभाव है, और जब अपन शांत अपने आत्मा में लीन होते हैं वो हमारा स्वभाव है। क्रोध करना हमारा विभाव है, और क्षमा भाव धारण करना हमारा स्वभाव है। बस जब हम माला फेरते हैं तो 9, 18 ऐसा 108 ऐसे ही क्यों करते हैं? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है मालूम? 9। इससे बड़ी बताओ? 1 और 0, 1 और 1, 1 और 2, वही सब रिपीट हो गए कि नहीं हो गए? अगर देखा जाए तो हम उस बड़ी संख्या को ही मान करके कम से कम 9 बार नमोकार, एक प्रयोग हुआ जिसमें वो कहते हैं कि अगर ठीक ढंग से 9 बार नमोकार मंत्र जितने समय में पढ़ा जाना चाहिए उतने समय में पढ़ें, तभी कर्मों की निर्जरा शुरू होती, तभी मन में शांति आना शुरू होती। और इसके पढ़ने का स्टाइल क्या है? उस तरह पढ़ें, और उसमें जितना एक एक आर्य छंद पढ़ने में जितना समय लगता है उससे 9 गुने समय में वह, क्योंकि ये जो नमोकार है वो आर्य छंद है। ये नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सवसाहूनम, आर्य छंद। ये छंद की अपनी पढ़ने की पद्धति, एक इतना छंद पढ़ने में जितना समय लगता है उससे 9 गुना समय जब हम पढ़ेंगे तभी हमारे परिणाम शांत होना शुरू होंगे। तो फिर एक कायोत्सर्ग 9 बार नमोकार मंत्र, या कि इसको 27 श्वासोच्छ्वास पर करेंगे, उसमें जितना समय लगेगा उतने समय के लिए शरीर से ममत्व छोड़ना, ये कायोत्सर्ग। तो एक 9 बार नमोकार पढ़ने का ही एक कायोत्सर्ग, फिर 2 कायोत्सर्ग तो 18 हो जाएंगे, 3 कायोत्सर्ग तो 27 हो जाएंगे, 4 कायोत्सर्ग, ऐसे करके जो है संख्या बढ़ती जाती है, और अधिकतम अपन 108 कर लेते हैं। उसमें भी टोटल देखें तो 1 और 8 प्लस 9 ही आएगा। 9 को जितनी बार मल्टीपल करेंगे 9 ही आएगा। 9 प्लस 9 18, 9 × 3 27, 36 40 5 54, फिर 63 71 72, हैं जैसे बढ़ते जा रहे 81 90 99, सब में 9 एटर्नल है। 9 संख्या जो है वो शाश्वत, इसीलिए मानी गई कि इसमें इसको कितनी भी बार मल्टीपल। एक व्यक्ति ने तो बहुत अच्छा इसके ध्यान आ गया मुझे कि जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए, जैसे कि किसी के भीतर 9 बुराइयां हैं, 9 वर्ष के हुए तो 18 के हो जाएं तो 1 अच्छाई और 8 बुराई, 27 के हो जाएं तो 2 अच्छाई 7 बुराई कम होती चली जानी चाहिए, है ना। फिर एक स्थिति आएगी कि 5 4, फिर जैसे 54 के हों तो 5 अच्छाई 4 बुराई, और 81 के हो गए 90 साल के होने पर तो बुराइयां 0 और गुण ही गुण रहना चाहिए। लेकिन उम्र बढ़ती जाती है तो उल्टा मामला होता चला जाता। किसी ने ऐसा भी घटाया था मजे का, इसलिए ये 9 संख्या जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अपन लोग 9 का इसी तरह उपयोग करते हैं। लेश किसे कहते हैं? भाव दशा का नाम लेश है। कलरेशन ऑफ थॉट्स, कलरेशन ऑफ बॉडी वो भी लेश है, और कलरेशन ऑफ थॉट्स हमारे अपने भावों का रंग। जैसे अपन कहते हैं ना कि भैया ये कपड़ा तो सफेद पहने लेकिन भीतर बड़ा काला है इनका, ऐसा मतलब क्या? कृष्ण लेश नील लेश, कापोत लेश, पीत पद्म और शुक्ल लेश, ऐसी छह लेशाएं, वो हमारी भाव दशा है, उसमें सबके लक्षण लिखे हैं कि ऐसा अगर हमारे परिणाम है तो कृष्ण लेशा के परिणाम, अगर ऐसे परिणाम है जैसे कि बहुत अत्यंत प्रचंड क्रोध के परिणाम है तो कृष्ण लेशा के, दूसरे के साथ छल कपट करने के परिणाम है तो कापोत लेशा के, सौरव फील करना, आलसी होना, ये नील लेशा के परिणाम, अपने कल्याण के लिए चिंतित होना पीत लेशा के, अपने और दूसरे के कल्याण के लिए चिंतित होना कृष्ण लेशा के परिणाम, धर्म ध्यान में लगे रहना पद्म लेशा के परिणाम, ऐसे करके बहुत सारी माने ये एक तरह का क्राइटेरिया है अपने परिणामों को कहना चाहिए मेजर करने का। तो लेशा अपनी भाव दशा, संस्कृत में इसकी परिभाषा क्या है, कषाय अनुरंजित योग प्रवर्तित लेशा, कषाय के साथ जो मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है उससे जो हमारे अंदर भाव दशा निर्मित होती उसे हम लेशा बोलते हैं। ये टेक्निकल शब्द है जैन धर्म का, कहीं भी इसका इस तरह से लेशा के मायने होता लश्चर, कॉमन डिक्शनरी में आप देखें तो लेशा के मायने होता लश्चर, लेकिन हमारे यहाँ पर लश्चर नहीं लिया, हमारे यहाँ तो कलरेशन ऑफ थॉट्स लिया, या कि बॉडी का कलर, हम लोगों का जो शरीर का रंग है वही भीतर का नहीं है, देवों का ऐसा है कि जो शरीर का रंग है वही भीतर का भी है, वही लेशा भीतर की भी है, जैसे ऐसे ही नारकियों में भी, सिर्फ मनुष्य तिरंज में है कि ये अलग अलग होती हैं, द्रव लेशा और भाव लेशा दोनों। मुनि महाराज शुद्धि के पश्चात जब आहार के लिए प्रस्थान करते हैं तो जो नियम लेकर आते हैं वो क्या लिखा, वो नहीं समझ में आ रहा, से नहीं बैठे वो हाथ हटा ले तो पुनः, अच्छा विधि नहीं, संयोग ठीक, वह संयोग से नहीं बैठे और फिर उन्होंने अंजलि छोड़ दी तो पुनः विधि लेकर के उस रोज जा सकते कि नहीं, नहीं जा सकते, एक बार एक बेला में चर्या के लिए निकल गए और विधि नहीं मिली तो आके चुपचाप बैठ जाओ, अब दूसरी बेला में उस दिन अब आप आहार नहीं लेंगे, ठीक है पूछ दिया, विधि नहीं मिली तो नहीं मिली, अब ऐसा नहीं है कि अभी सुबह के टाइम में गए थे विधि नहीं मिली तो अब दोपहर में सामायिक करके फिर से उठ जाएंगे, ऐसा नहीं ये दो बार वाला मामला नहीं, अगर प्रवचन में संकट समाधान में हम आए और हमारे यहाँ आने से घर में अशांति हो जाए तो क्या करना चाहिए अगर घर वाले लोगों को हमारा यहाँ आना अच्छा ना लगे तो हम अपने जीवन की श्रेष्ठता के लिए हम क्या करें भैया, बहुत पुण्य चाहिए, बहुत पुण्य चाहिए, सब लोग संतुष्ट हों, सब लोग एक विचार के हों, हमें ऐसा पुण्य भी कमाना चाहिए जिससे कि हाँ जिससे कि क्षोभ उत्पन्न ना हो, और दूसरी चीज ये है कि हम घर गृहस्थी के कामों में कोताही ना करें, हम उन्हें निश्चिंत कर दें कि हमारे मंदिर धर्म ध्यान करने से गृहस्थी के किसी कार्य में किसी को कोई बाधा नहीं आएगी, हम सब का सब काम भी कर देंगे और हम अपना धर्म ध्यान भी कर लेंगे, या तो ऐसा एडजस्ट, जब हम मंदिर बहुत जाने लगे थे तो सबको ये लगता था कि अब तो लड़का पढ़ने में कच्चा हो जाएगा, तो कितनी जिम्मेदारी हो जाती थी कि अब अगर मंदिर में 3 घंटे मैंने लगाए हैं, सुबह 1.5 घंटे शाम को 1.5 घंटे, तो फिर मुझे कहीं से भी अपने सोने में से समय निकाल करके पढ़ना पड़ता, क्योंकि अगर परसेंटेज कम आएगी तो लोग कहेंगे और जाओ मंदिर और पढ़ लो और करो धर्म ध्यान, जी आ गए नंबर नहीं, तो बहुत जिम्मेदारी हो गई, जिसको धर्म ध्यान करना उसकी तो बहुत जिम्मेदारी बढ़ गई, वो अपना धर्म ध्यान भी करेगा, सबको संतुष्ट भी रखेगा, तभी तो मजा है कि सबको संतुष्ट भी रखें और धर्म ध्यान भी करें, अगर ऐसा नहीं हो सके भैया तो ज़्यादा संक्लेश होने लगे तब फिर मैं ये सलाह नहीं दूंगा आपको कि आप अपने धर्म ध्यान में मशगूल रहें और सबको संक्लेशित करें, उनको धीरे धीरे करके अपने स्वभाव से अपनी क्रियाओं से उनको भी शांत करें और फिर उसके बाद अपना धर्म ध्यान करें। हमको तो वहाँ झांसी में हमने देखा कि एक अम्मा जी थी, तो मतलब मैं अम्मा जी कह रहा हूँ, आप लोग क्या कहेंगे, मम्मी कह लो, मम्मी में ऐसा लगता है कि जैसे छोटी हैं और अम्मा जी में थोड़ी बड़ी लगने लगती हैं, ऐसा हो जाता गड़बड़, तो वो तो मम्मी थी, वो किसी छोटे उनके बच्चे थे, तो वो कहती थी कि महाराज हमको तो हमारा इतना पुण्य तो नहीं है कि हमारे सब घर के लोग शामिल हों धर्म ध्यान में, लेकिन इतना हमारा पुण्य है कि जब भी हम मंदिर जाने का कहते हैं तो सब लोग कहते हैं कि फौरन तैयार हो हम छोड़ाएंगे। वो कहते हम छोड़ाएंगे, हम जाएंगे नहीं। बोले हमें आपके पास 3 बार आना है, तो हमारे जीवन साथी कहते हैं कि देखो हम तो मंदिर जा नहीं पाते, न महाराज के पास बैठ पाते, तुम बैठते हो बहुत सौभाग्य, तुम तो हमें बता देना, हमें ये सौभाग्य देना कि जब तुम्हें जाना हो तो हमें फोन कर देना, हम तुम्हें अपनी गाड़ी से छोड़ने जाएंगे। और पूरे 4 महीने मैंने देखा उनको कि ऑफिस में फोन करती थी कि बस अब टाइम होने वाला 2:30 बजे मैं जाऊं, तो बोलते बस मैं आता हूं अभी, और 2:30 बजे फ्री लेकर के छुट्टी, और वहां से मेरे पास 10 मिनट में उनको छोड़ करके, कब लौटोगे आप? शाम को। शाम को हम 5 बजे आएंगे महाराज के पास से, 6 बजे आएंगे, ठीक है तो हम ऑफिस से लौट करके आपको लेते हुए जाएंगे, आप किसी उससे नहीं जाना, रिक्शे से नहीं जाना, हमें ये सौभाग्य देना कि हम आपको लेकर हम इतनी ही सेवा करें। ऐसा भी कोई हो सकता, बड़ा आश्चर्य लगता था, ये भी पुण्य का उदय है वो नहीं कर, लेकिन ऐसा भी बहुत मुश्किल है। आज तो ऐसा है कि अपन भी नहीं कर रहे और दूसरे को भी नहीं करने, ये बहुत मुश्किल होती है। और पाप आप करने के लिए नहीं, अगर आप ये कहो कि कहाँ गए थे, घूमने गए थे, कुछ नहीं बोलेंगे कोई भी, मंदिर गए थे तो जरूर बोलेंगे। हाँ आप ये कहो कि घूम रहे थे, हम अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे, क्या कहीं नहीं जा सकते, क्या हमने इसलिए गृहस्थी की है, क्या हम मार्केटिंग करने गए थे, कुछ नहीं कहेंगे मार्केटिंग करने गए थे, मंदिर गए थे तो आग लग जाएगी फिर तो एकदम, ये होता है, ये पाप का उदय है इसलिए ऐसा हो जाता है। फिर भी अपन को धैर्य रखना चाहिए, धर्मात्मा को हमेशा बहुत धैर्य रख करके सबको संतुष्ट करके, कर तो नहीं सकते संतुष्ट, लेकिन फिर भी भावना तो यही भानी चाहिए कि किसी को हमारे धर्म ध्यान से क्षोभ उत्पन्न ना हो, हम शांतिपूर्वक अपना धर्म ध्यान करें और उसको भी हमारे जीवन से शिक्षा मिले। क्या आप, बस एक प्रश्न और, क्या आपको यहाँ से जाने के बाद हमारी याद आएगी कि नहीं? आएगी तो नहीं आएगी क्या? हम इतने पत्थर तो नहीं है, इतने दिनों में भी आप नहीं समझ पाए, और किसी को भी इतना पत्थर तो नहीं होना चाहिए कि जो दूसरे की भावनाओं को याद न रखे, दूसरे के अच्छाइयों को याद न रहे। सबके चेहरे तो याद नहीं रहेंगे, लेकिन सब लोग ने बैठ के धर्म ध्यान किया है तो ये भी अपना कोई पूर्व पुण्य का उदय होगा। अपन ने ऐसे ही पहले भी सबने इतने लोगों ने बैठ के धर्म ध्यान करा होगा, ये नहीं भी करा होगा तो आगे अपन को अवसर मिलेगा ऐसा, एक साथ बैठे सामूहिक पुण्य का बंध होता है तब कभी कभी जो है, और सामूहिक पुण्य के उदय से हम बच जाते हैं बहुत सारी चीजें, तो याद तो आती है। लेकिन अब एक जगह लिखा है कि स्मृति करना बुरा नहीं है, स्मृति में आसक्त होना बुरा है। क्या मुझे माँ की याद नहीं आती? आती है तो क्या याद आने से पाप लगेगा? क्या याद आने से पाप नहीं लगता, आसक्ति होने से पाप लगता। तो याद, आप कह रहे हैं कि क्या आपको याद आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, याद आएगी, जिन जिन लोगों के ज्यादा उसमें रहे होंगे। नहीं मतलब उनका ये है कि कहीं भी यहाँ से आप एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जाएंगे, दूसरे से और कहीं भी जाएंगे, या कि 4 महीने बाद, वो उनके तरफ से मैं बोल देता हूँ, वो कह रहे हैं कि अगर मान लो आप 4 महीने भी बाद भी जाएंगे, अभी मैंने ये नहीं कहा कि मैं 4 महीने बाद जाऊंगा, मैं तो आपकी तरफ से बोल रहा हूँ मैं नहीं तो आप हमारी बात को पकड़ लो, तो ऐसा कभी भी तो जाएंगे, कौन रह सकता है। लेकिन स्मृति तो, अभी परसों भी यही बात शायद अपन लोग कर रहे थे कि कई लोगों को तो ये लगने लगता है कि अभी तो महाराज जी हमको यहाँ आहार में इतना ध्यान रख रहे हैं या हमसे बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद महाराज जी तो और कहीं चले जाएंगे, उनको हमारे जैसे और भी लोग मिल जाएंगे, फिर तो महाराज हमको भूल जाएंगे, हमेशा महाराज को तो नए लोग मिलते रहेंगे। नहीं भैया, मेरे अपने जीवन में मैंने अनुभव किया है कि ये चीज़ और व्यक्ति में बहुत फर्क है, चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं, व्यक्ति को रिप्लेस नहीं कर सकते, एक व्यक्ति की जगह दूसरे को खड़ा नहीं कर सकते। आप ये सोचें कि आप नहीं हैं तो आपकी जगह पर कोई और होगा, नहीं, आपकी जगह पर नहीं होगा, आपकी जगह वहाँ अलग सुरक्षित है, वो अपने लिए अलग आकर के और अपनी जगह बना लेगा। नया मित्र आवे इस शर्त पर कि पुराने को विदा होने पड़े, मुझे ऐसी मित्रता स्वीकार नहीं है। जो भी आता है वो अपना स्थान अलग बना लेता है और सबका अपना यूनिक होता है और सब अपना अपना कल्याण इसी तरह से तो करते हैं। अच्छा देखो, भगवान के पास अपन सब तो आते हैं, भगवान के लिए कौन अपना कौन पराया है, भगवान के लिए तो सब अपने हैं। ठीक इसी तरह का भाव अपने भीतर आना चाहिए, पर आ जाता है सामान्य रूप से, एक लगाव तो हो ही जाता। बहुत दिन तक एक जगह रहें तो हम लोगों को भी लगने लगता। अभी तो आपने ऐसा पूछा, एक ने तो ये पूछा था कि जब आप छोड़ के जाते तो आपको दुख नहीं लगता, याद आती ऐसा नहीं, जब आपको दुख नहीं होता तो आता है, दुख आता है थोड़ी देर को लगता, और कैसा लगता कि देखो यहाँ तो इतने बढ़िया से सब लोग धर्म ध्यान कर रहे थे, अब आगे जाएंगे धर्म ध्यान ही तो करना है और क्या करना है, चाहे यहाँ रहें चाहे कहीं भी रहें। कई बार सोचता हूँ फिर वहाँ जाऊँगा, क्या पता ऐसे लोग और बढ़िया धर्म ध्यान करने वाले मिले कि नहीं मिले, अपन ठीक है देखेंगे। तो वो चीज़ जो है मन के भीतर आती, तो इतना भाव तो आते ही, प्रशस्त राग तो रहेगा भैया, इतना तो नहीं है कि एकदम रूट हो जाएं या कि एकदम पत्थर हो जाएं। जब विवेकानंद के गुरु भाई नहीं रहे तब उनकी आंख भीग गई, तो लोगों ने कहा इतने पहुंचे हुए साधक और आपकी आंख भीग गई, तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि जो सन्यास मुझे संवेदन शून्य होना सिखाए मुझे वो सन्यास नहीं चाहिए, मुझे पत्थर बनाने वाला सन्यास मुनि मुझे नहीं चाहिए, मेरे भीतर तो उतनी ही संवेदनशीलता रहनी चाहिए जितनी कि एक व्यक्ति में होनी चाहिए। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं नहीं भूलूंगा। अच्छा मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, मैत्री भाव जगत में पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे, दीन और से करुणा स्रोत बहे रहे, भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं रहे, ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।